Kalpa Radio Exclusive Interviews. एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पानी के संकट से जुड़ी हुई बातें। बारिश के पानी का संग्रहण कैसे करें, इस विषय के विशेषज्ञ विपिन दुबे से एक विशेष बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
पानी अनमोल है, हम इसे बर्बाद करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं, प्रदूषित करते हैं। आखिर कब तक? इसे पानी की तरह मत बहाइए, पानी को पैसे की तरह बचाइए।
अर्पा रेडियो के स्टूडियो में आज हमारे साथ उपस्थित हैं भूजल वैज्ञानिक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विशेषज्ञ श्री विपिन दुबे जी, जो बरसों से ये काम कर रहे हैं, लोगों से पानी की खेती करवा रहे हैं। और वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने जल संग्रहण का कार्य बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर करवाया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को साकार करते हैं और लोगों को इस बारे में जानकारी देते हैं कि पानी का संग्रहण कैसे किया जाए। गर्मियां बस ख़त्म होने को हैं और मानसून बहुत जल्दी आने वाला है। अगले साल ये तकलीफ़ें ना हों जो इस साल गर्मियों में हमने सही हैं या पिछले कई कई सालों से सही हैं, इसके लिए आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आने वाले बारिश के मौसम में पानी को कैसे संग्रहित करना है सुनकर उस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। नमस्कार विपिन जी, आपका स्वागत है अर्पा रेडियो में।
नमस्कार
विपिन जी, आप कब से काम कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का काम लोगों से करवा रहे हैं, कितना समय हुआ है?
संज्ञा जी, मैं वर्षा जल संग्रहण संचयन का काम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम पिछले 30 वर्षों से कर रहा हूं। उस समय से कर रहा हूं जब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बुगाहट भी नहीं थी। वो काम ऐसे मेरे दिमाग में आया कि जब मेरा खुद का जो ट्यूबवेल है, जो मैंने सन 1998 में मैंने कराया था, जो महज 120 फीट का था और मात्र 2 साल में वो ट्यूबवेल मेरा सूख गया, तब मुझे लगा कि मैं एक भूजल वैज्ञानिक हूँ और मुझे ही पानी के क्राइसिस को मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर में जो पानी को लेकर के परेशान होंगे। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम पानी की बचत करें। वो पानी की बचत घर के अंदर से लेकर के घर से बाहर, अर्थात वर्षा जल संग्रहण संचयन का काम क्यों ना हम करें, क्यों ना कोई ऐसी पद्धति अपनाएं जिससे हम वर्षा जल का संग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो देखने को हमको मिलता है गर्मी में और बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो फेल हो जाते हैं, वो हम इसके द्वारा उस चीज़ को दूर कर सकें।
तो आपने व्यक्तिगत रूप से जो 30 साल पहले समस्या को देखा, उस समस्या को दूर करने के लिए आप इतने सालों से लगे हैं और वर्षा जल संचयन के लिए आपने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी, लेकिन हमको ऐसा लगता है जब 30 साल पहले आपने ये काम सोचा होगा, शुरू किया होगा, उस समय छत्तीसगढ़ में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था। हमारे बिलासपुर में अर्पा नदी है जिसमें कहा जाता था कि बस जरा सा रेत खोदो तो उसके नीचे पानी बहता है, अंतर सलीला नदी कहा जाता है उसको। लेकिन अब 30 सालों के दरमियान वो लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, लेवल पानी का नीचे जाने का कारण क्या होता है? क्या बहुत ज़्यादा हम पानी खर्च करते हैं वो, या कुछ भूवैज्ञानिक स्थितियाँ ही ऐसी होती हैं?
संज्ञा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये जो समस्या अभी देखने को हमको मिल रहा है पूरे राष्ट्रीय स्तर में और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही, इसका बहुत बड़ा कारण है कि शहरीकरण, दूसरा पॉपुलेशन का ग्रोथ, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना, और चौथा जो है नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल्स, नंबर ऑफ़ जो ट्यूबवेल्स है उसका बहुत ज़्यादा होना। नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ओवर एक्सट्रैक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम ज़मीन के नीचे से पानी को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। अर्बनाइजेशन होने की वजह से हमने पूरे चारों तरफ सड़कों का कॉन्क्रीटीकरण कर दिया है, तो पानी जमीन के नीचे रिस कर नहीं जा पा रहा है। और रहा नदियों का सूखना और उसमें पानी की कमी का आना, वो भी एक शहरीकरण का एक पार्ट ही आप मान के चलिए, क्योंकि आज जितनी भी नदियां हैं अपने प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में, वो सिकुड़ती जा रही हैं और कुछ नदियां समाप्ति की ओर में है। यहाँ तक कि जो हमारे तालाब, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति है, वो भी अब हमको तालाब बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे प्रदेश में करीब करीब 2.5 लाख तालाब हुआ करते थे किसी समय में, आज वो सिमट करके 1,50,000 के आसपास हो गया है। रायपुर शहर में 1200 तालाब थे केवल रायपुर शहर में, जो सिमट करके केवल 250 में आ गया है। आपके बिलासपुर में यहाँ पर 1200 से 1300 तालाब हुआ करते थे, वो सिमट करके 220-230 में आकर के सिमट गया है। तो ये जो वाटर बॉडीज है जिसके ऊपर हम ध्यान आकर्षित नहीं हो रहे हैं और उसको ख़त्म करने के कगार में हम लगे हुए हैं अपने शहरीकरण को करके, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के को लेकर के।
अच्छा, मतलब तालाब क्योंकि जब रहते थे बड़ी संख्या में, तो ऊपर जो हमको पानी दिखाई पड़ रहा है उसके साथ साथ वो पानी नीचे भी ज़मीन में जाता रहता होगा और वाटर लेवल बढ़ता रहता जी, होगा जी। और अब उसकी कमी के कारण हम पानी की कमी महसूस कर रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना पानी खर्च कर रहे हैं उतना पानी ज़मीन के अंदर वापस भी पहुंचाएं।
सही कह रहे हैं,
क्योंकि एक सीमित मात्रा में संग्रहित पानी है जिसका हम तेज़ी के साथ दोहन कर रहे हैं। ये बात हर मामले में लागू होती है, वृक्षों के मामले में और पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में, लेकिन बात फ़िलहाल पानी की है कि पानी के बिना हम वाकई ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई योजनाएँ हैं केंद्र सरकार की योजना, जैसे कैच द रेन योजना है या प्रदेश सरकार की योजना, जिसके तहत इस तरह के काम हो रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से लोग क्या कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए, पानी को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाने के लिए?
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। पूरे विश्व में आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि ज़मीन के नीचे में केवल 1% पीने का पानी बचा है। इससे ही हमको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में पानी की कितनी बड़ी किल्लत पूरे विश्व स्तर पे होगी।
सिर्फ 1%,
केवल 1%। और यहाँ तक कि हमारे भारत देश में जो नीति आयोग है, नेशनल वाटर मिशन है, सेंट्रल वाटर बोर्ड की जो अथॉरिटी है, उनके सर्वे के अनुसार भी हमारे देश के जो 20-25 से जो 30 मेट्रो सिटीज़ हैं उसके ज़मीन के नीचे की जो पानी की स्थिति है वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। उसको नीति आयोग ने एक 0 day करके उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब है कि पूरा पानी जो है इन मेट्रो से ख़त्म हो जाएगी। ये स्थिति अभी हमारे भारत देश की है। अब केंद्र सरकार ने ये जब पानी की जो विकराल स्थिति को देखते हुए उन्होंने अलग से एक जल मंत्रालय का गठन ही किया हुआ है, जिनका केवल वही काम है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है और नदियों का जो है रेजुविनेशन करना है, उन्हें ठीक करना है, उसे बचाना है, तालाबों का संरक्षण करना है और जो तालाब बचे उनको संरक्षित करना है। और हर प्रदेश में, प्रदेश सरकार को उन्होंने कहा है कि नए से नए तालाब का और भी अधिक मात्रा में निर्माण करें ताकि वर्षा जल संग्रहण संचयन का काम भरपूर तरीके से हो सके। इसके अलावा कैच द रेन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड वाटर डे के दिन इसे लॉन्च किया था और अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने भी इन्हें लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य ही यही है कि बारिश आने के पहले प्रदेश सरकार अपने सभी भवनों में, सरकारी भवनों में, सभी प्राइवेट संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सभी जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रहण एवं संचयन को लेकर के उसकी पुख्ता व्यवस्था कर दे, ताकि बारिश के आने के पहले ये सब संरचनाएं जो है तैयार हो जाए और जब बारिश हो तो जिस कैंपस के अंदर में बारिश हो उस कैंपस से पानी का बहाव सड़क की तरफ ना आए। ये केंद्र सरकार की बहुत ही महती योजना है, उनका यही उद्देश्य है कि आपके कैंपस में जो पानी गिर रहा है वो आपके कैंपस में ही एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो बारिश का पानी जो सड़क में ना आए, सड़क में आने से सड़क भी ओवर फ्लडेड होता है, सड़कें भी खराब होती है और पानी नाली और नालों और नदियों के माध्यम से वो समुद्र में भी पहुंच जाता है। तो हमको उसको संग्रहित करने के लिए उन्होंने एक एक विशेष योजना, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, उन्होंने एक टैगलाइन दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ हमारी प्रदेश सरकार भी नरवा कार्यक्रम उन्होंने चलाया हुआ है, तो नरवा कार्यक्रम भी वर्षा जल संग्रहण संचयन को लेकर बनाया हुआ कार्यक्रम है, जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। अगर इसका क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से होगा तो मेरे निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो 30 से 32 ब्लॉक करीब करीब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की तरफ जो मूव कर रहे हैं उनमें वो सुधार आएगा और वाटर लेवल को बढ़ाने में बहुत काफ़ी मददगार होगा।
तो इन योजनाओं के तहत आम आदमी कैसे जुड़ सकता है, या जैसे आपने कहा ये शासकीय भवनों में पुख्ता व्यवस्था की जाए, तो ये पुख्ता व्यवस्था क्या है? क्या शासकीय कर्मचारी या उस बिल्डिंग के खास जो हैं उन लोगों को पहल करनी होगी, या सरकारी तंत्र खुद उन तक पहुंच रहा है, और आम आदमी इस व्यवस्था से कैसे जुड़ सकता है?
राज्य सरकार जो है अपने जितने भी जो नगर निगम है, नगर पालिका जो परिषद है, उसे वहाँ पर उन्होंने वर्षा जल संग्रहण संचयन, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द से ज़्यादा प्रचलित हुआ है, फेमस हुआ है, उसको उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है कि हर बिल्डिंग में वर्षा जल संग्रहण संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराना अनिवार्य है। इसके लिए नगर निगम रायपुर नगर निगम ने, बिलासपुर नगर निगम ने जो 1500 स्क्वायर फीट से ऊपर के जो मकान हैं जिनकी छतें हैं उनको तो निश्चित रूप से लगाना ही होगा। भवन निर्माण कार्य के समय ही नगर निगम जो है उनसे एक राशि डिपॉजिट करा लेती है और उस राशि के तहत जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस मद से तैयार होता है और वर्षा जल संग्रहण संचयन का काम नगर निगम करवाती है। इसके अलावा व्यक्ति को खुद ही सोचना होगा, सरकार और शासन तो अपने एक नियम और कानून के तहत ही काम करी होगी, लेकिन जब पानी की बात होती है तो पानी तो हर चीज़ के लिए होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है, तो इसके लिए हर व्यक्ति को आगे आना होगा। हम हर समय सोचेंगे कि सरकार ही हमारे लिए पूरी हर चीज़ की व्यवस्था करे, ऐसा नहीं होता है। जब पानी को बचाना होगा तो उसमें हर व्यक्ति का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। एक कहावत है कि एवरी ड्रॉप काउंट्स, एक बूंद पानी भी जो है मायने रखता है। एक बूंद पानी भी हम बचाते हैं तो दिन भर में यदि एक बूंद पानी को हम विश्व स्तर में देखें तो अरबों लीटर पानी संग्रहित हो जाता है पीने का पानी उससे। तो ये हर व्यक्ति का योगदान इसमें होना जरूरी है, एक चैन बनना होना जरूरी है। इसके लिए जो जितने भी जो एनजीओस होते हैं, जो शिक्षा के जो केंद्र होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, उन्हें आपस में जुड़ना होगा और एक ऐसा मुहिम चलाना होगा, एक ऐसा जन जागरण अभियान चलाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, उनका पानी का महत्व बताना होगा और इस तरीके से ही हम पानी को बचाने में सफल हो सकते हैं।
आम आदमी को अपने घर में अगर वाटर हार्वेस्टिंग या छत के पानी को ज़मीन के अंदर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी है तो उसको कहां संपर्क करना होगा और कितना खर्चा होगा करीब करीब इसमें?
आम व्यक्ति को अपने घर में वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कराना है तो वो सीधे नगर निगम में जाए। नगर निगम में वहाँ पर पंजीकृत भूजल वैज्ञानिकों की लिस्ट होती है, उनके वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर इंचार्ज होता है, जो नगर निवेशक विभाग में वो इंजीनियर होता है, वहाँ उनसे संपर्क करके आप उनसे कॉन्टेक्ट नंबर ले करके किसी भी पंजीकृत भूजल वैज्ञानिक से अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगवा सकते हैं और उसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 15,000 में ही बहुत अच्छा एक साइंटिफिक मेथड से बना हुआ सिस्टम तैयार करके वो भूजल वैज्ञानिक आपके घर में लगा देगा, जिससे आपके छत में गिरने वाला पानी उस फिल्टर के माध्यम से छन करके आप अपने बोर में संग्रहित कर सकते हैं और आपका बोर जो गर्मी के दिनों में आपको पानी नहीं दे पाता है वो बहुत अच्छे से आपको पानी देगा। आप ज़रूर इसे अवश्य कराएं। पानी बचाना अपने आप में एक बहुत ही पुण्य और परोपकारी काम है। आप हम कहते हैं ना कि हम जब मर करके जाएंगे तो ईश्वर हमसे क्या पूछेगा, वो यही पूछने वाला है स्वर्ग में जाने के लिए कि आपने पानी बचाया है या फिर पेड़ बचाया है। ये काम यदि दो व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो बिल्कुल स्वर्ग का हकदार बनेगा वो।
वाह, बहुत अच्छी बात कही विपिन जी आपने, और साथ ही इतनी सारी इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कल क्या होगा नहीं बचेगा, जल क्या होगा सोचो आखिर,
सोचो आखिर।
कल क्या होगा,
कल क्या होगा
नहीं बचेगा,
नहीं बचेगा
जल क्या होगा।
Bye.
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
यदि आप अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बरसात के पानी को रोकने का प्रबंध करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं अर्पा रेडियो पर। एक मेल लिखिए अर्पा रेडियो arpaaradio@gmail.com।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।